नमस्कार मित्रों, रेडियो मधुबन पर चलो व्याकरण की पढ़ाई करते हैं। पिछले दो दिन हमने संज्ञा, सर्वनाम और थोड़ा सा विभक्तियों के बारे में पढ़ा, तो अब हम कुछ ऐसे संस्कृत वाक्य पढ़ते हैं जिसमें एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। मीना जलम पिबति, वृक्षः फलम ददाति, कृष्णः दधिम खादति। यहाँ मीना, वृक्षः, कृष्णः तीनों प्रथम पुरुष में हैं, क्योंकि वे ना तो तुम हैं ना मैं हूँ, कोई अन्य हैं। और चूंकि वे प्रथम पुरुष में हैं और कर्ता हैं, इसलिए जो क्रिया का रूप लगा वो सब एक जैसा है। पिबति, ददाति, खादति और उनके साथ एक एक संज्ञा और भी जुड़ी हुई है, लेकिन इस दूसरी संज्ञा का रूप कर्म की विभक्ति के साथ है। मीना क्या पीती है? मीना जल को पीती है, जलम पिबती। वृक्ष क्या देते हैं? वृक्ष फल को देते हैं, वृक्षः फलम ददाती। कृष्ण किसको खाता है? कृष्ण दही को खाता है, कृष्णः दधिम खादती। हालांकि हिंदी में हम कई बार इस को नाम की विभक्ति प्रत्यय को खा जाते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कृष्ण दही खाता है, लेकिन अगर हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखो तो कृष्ण दही को खाता है। और इसका भूतकाल का रूप भी देखो कि कृष्ण ने दही को खाया, कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण कंस को मारता है ना। तो कई बार हिंदी में हम को रखते हैं और कई बार को हटा देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं किया जाता है। संस्कृत में हर बार द्वितीय की विभक्ति के लिए जो शब्द है उसी को रखना पड़ता है। जैसे जलम यहाँ द्वितीय के रूप में है, दधिम ये भी द्वितीय के रूप में है, फलम ये भी द्वितीय के रूप में है। और हाँ, एक भूल कभी कभी संस्कृत में हो सकती है, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि संस्कृत में नपुंसक लिंगी जितने भी शब्द होते हैं उनके कर्ता और कर्म दोनों रूप एक ही जैसे होते हैं। तो वृक्षः फलम ददाति, यहाँ तो फलम द्वितीय की विभक्ति में है, वृक्ष फल को देता है, लेकिन फल यहाँ है, फलम अत्र वर्तते। यहाँ पर फलम शब्द जो है वह प्रथमा की विभक्ति में है। तो संस्कृत में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो नपुंसकलिंगी शब्द होते हैं उनके चूंकि कर्ता और कर्म दोनों के रूप एक ही जैसे होते हैं, तो वाक्य के संदर्भ से, वाक्य को पढ़ करके हमें पहचानना पड़ता है कि यह शब्द प्रथमा की विभक्ति में लगा है या द्वितीय की विभक्ति में लगा है। तो हालांकि परीक्षा में ऐसे पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर मैं कभी पेपर सेटर हूँ तो मैं तो ज़रूर ये प्रश्न पूछूँ कि चलो बच्चों, मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ और इसमें उस शब्द की विभक्ति बताओ। जैसे दधिम मधुरम वर्तते, दही मीठा है, यहाँ दधिम या दही प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन कृष्णः दधिम खादति में दही द्वितीय विभक्ति में हो जाता है। तो जब तुम संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ते हो या जब शिक्षक सिखाते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम शब्दों को पहचानना सीखें कि उनकी विभक्ति क्या लगी है, तो फिर जो विभक्तियाँ रट करके रखी होंगी, जैसे देवाः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, देवम देवौ देवान, ये तीन शब्द कर्म की विभक्ति के लिए, द्वितीय विभक्ति के लिए आते हैं। तो अगर मैं कहूँ अहम देवम वंदे, तो यहाँ देव द्वितीय की अर्थात कर्म की विभक्ति में आ गया। मैं देव को वंदन करती हूँ इस अर्थ में। तो मित्रों, आज एक बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं जिसमें कृष्ण के लिए बहुत सारे नामों का प्रयोग किया गया है, कृष्ण की वंदना है। और चूँकि मैं कृष्ण की वंदना करने वाली हूँ, तो कृष्ण के लिए जितने भी नाम आए हैं सब के सब द्वितीय की विभक्ति में हैं। तो देखो, किस प्रकार, हर शब्द को पहचानना और अपने आप को स्मरण दिलाना कि ये उस शब्द की द्वितीया है और वे सारे शब्द जो हैं वो सारे के सारे कृष्ण के नाम हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वसुदेव सुतम अर्थात जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको, देवम देव को, कंस चाणूर मर्दनम कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले कृष्ण को, देवकी परमानंदम देवकी को परम आनंद देने वाले को, कृष्णम ऐसे कृष्ण को, जगद्गुरुम जो जगद्गुरु है उस कृष्ण को, और वंदे अर्थात मैं वंदना करती हूँ। और वंदे शब्द का परिचय तुम्हें वंदे मातरम के कारण भी है। वंदे मातरम मैं माता को नमस्कार करती हूँ, माता की वंदना करती हूँ इस प्रकार। और एक और बात की तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार जब हम लिखते हैं जैसे राम ने रावण को मारा, तो आजकल थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा जाता है कि राम अलग ने अलग रावण अलग को अलग। लेकिन व्याकरण के हिसाब से देखो तो सही क्या है, राम ने एक शब्द, रावण को एक शब्द, जैसे संस्कृत में होता है रामः अर्थात राम ने, रावणम अर्थात रावण को। तो जब हम कहेंगे राम ने एक शब्द या रावण को एक शब्द, अर्थात उस शब्द को विभक्ति के प्रत्यय के साथ जोड़ करके नया शब्द बना करके हम उसका जब प्रयोग करते हैं, तो फिर उस वाक्य में शब्द को कहीं से उठाकर कहीं भी रख दो लेकिन अर्थ में अंतर आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और वाक्य सटीक और सार्थक हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण का यह चलन है कि वहाँ कोई विभक्ति का प्रत्यय नहीं होता है। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के पहले ही कोई ऐसा शब्द लगा देते हैं जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। और प्रीपोजिशन का नाम क्या, पोजिशन से पहले अर्थात संज्ञा की जो जगह है उससे पहले ये प्रीपोजिशन लगता है, जैसे टू है, ऑफ है, इन है, अप है, ये सारे संज्ञा के पहले आते हैं और ये अलग शब्द के रूप में वहाँ आते हैं। इसलिए अगर हमने शब्दों का उलट फेर कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे अंग्रेजी में कहेंगे राम ईट्स मैंगो, राम आम को खाता है, रामः आम्रम खादति। अब अंग्रेजी में अगर हमने राम और मैंगो को उलट पलट दिया और कहा कि मैंगो ईट्स राम, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन संस्कृत में अगर हमने रामः और आम्रम इन दोनों शब्दों को उलट फेर कर दिया, आम्रम रामः खादति या आम्रम खादति रामः या खादति रामः आम्रम या खादति आम्रम रामः, तो देखा कि संस्कृत में किसी भी तरह से वाक्य का हम उलट फेर कर सकते हैं लेकिन किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलता ना उस वाक्य का अर्थ बदलता है। तो ये है कारण कि प्रत्यय को हमेशा शब्द के साथ ही जोड़ करके ही उसका प्रयोग होता है। लेकिन आजकल कभी कभी थोड़ी सी गलती से ध्यान ना देने की वजह से कई लोग हिंदी में लिखते समय विभक्ति के प्रत्यय को अलग कर देते हैं, राम ने आम को खाया, तीन शब्द लिखने की जगह पांच शब्द लिखे जाएंगे जो कि गलत है। तो इस गलती से तुम बचते रहना। तो चलो आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम लीना महिंदले को अनुमति दो और सुनते रहो ये कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर जो व्याकरण की पढ़ाई का कार्यक्रम है। सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।